ट्रांसलेशन कोई तुम लोग कर देना। हियर आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी बट ट्रांसलेशन विल बी डन। समटाइम्स आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। टुमारो इन मॉर्निंग यू कैन कम इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन। किसी समय नारद जी द्वारका पधारे। जिस समय द्वारका में पधारे उस समय तुम भी बैठी बैठ करके सुनो, सब लोग सुनना। द्वारका में जब आए तो वहां पर बड़ा भारी यज्ञ चल रहा था। हजारों विद्वान ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में स्वाहा स्वाहा की ध्वनि चारों तरफ आकाश में घूम रही थी और आकाश भी आग और धुएं के घी के धुएं से सुंदर चारों तरफ फैल रहा था। वातावरण सब निर्मल हो रहा था। जिस समय यज्ञ बीच में था उसी समय आकाश में एक ज्योति पुंज दिखाई पड़ी। मेरी हिंदी कठिन तो नहीं है, समझ में आ रहा है सब में। ज्योति एक दिखाई पड़ी। लोगों ने सोचा जी सूर्य से कोई अंश टूट करके गिर रहा है, बहुत ही चमकीला। डरे जो सूर्य का कोई खंड गिर रहा। धीरे धीरे वो जब नीचे आने लगी, जब बहुत निकट आ गई ज्योति, अरे देखा जी से तो कोई आदमी है। फिर नीचे जब और भी आ गई देखा तो नारद ऋषि है, बीना लेकर के उतर रहे हैं। नीचे उतरे वसुदेव महाराज जी जो कृष्ण के पिताजी थे, उन्होंने कहा यज्ञ बंद कर दो, अब यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। यज्ञ का फल साधुओं का संग साधुओं का दर्शन, ये तो साधु खुद आ गए, अब यज्ञ करने की क्या जरूरत है। उस समय यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। तप दान इत्यादि जितने भी धर्म है साधु संघ सबका मूल तात्पर्य है। यहां तक कि भगवान का दर्शन भी सुलभ हो जाता है यदि वैष्णव का दर्शन हो गया, और भगवान से भी दयालु उनके भक्त लोग होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। यज्ञ बंद हो गया और महाराज वसुदेव जी नारद जी के चरण पखारे, जो कृष्ण के पिता है, और पखारने के बाद बोले ओह नारद जी आज मेरा जन्म सफल हो गया। कृष्ण उनके घर में हैं, उसके लिए जन्म सफल नहीं मानते। मान रहे हैं किसके लिए? कृष्ण का सबसे प्यारा कोई भक्त आ गया तो उसके लिए मान रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देवो देहो देहिनां क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। कोटि कोटि जन्मों के बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। क्षण भंगुर है, मनुष्य जन्म अधिक नहीं चाहता, अधिक से अधिक 100 वर्ष, और उसमें भी सोने में चला गया था, कुछ पढ़ने में चला गया, कुछ बुढ़ापे में चला गया। मुश्किल से 10 वर्ष 20 वर्ष बचता है, वो भी विवाह शादी कर घर बनाना, वाणिज्य व्यवसाय करना, बच्चों का पालन पोषण करना, वो भी चला जाता है तो भजन कब करेगा। उसमें भी तत्रापि दुर्लभम, किंतु उस मनुष्य जन्म में और भी दुर्लभ है वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान का यदि कोई प्रिय व्यक्ति मिल जाए, दर्शन मिल जाए, समझो जी हमारा परम सौभाग्य है। और मनुष्य जन्म में कोई साधु संत नहीं मिला, शुद्ध शुद्ध साधु संत को मिलना बड़ा भारी कठिन है। मिल जाए तो समझो जैसे आज हमारा जीवन सार्थक हो गया। हमारा कल्याण कैसे होगा, उनसे उन्होंने पूछा, हमारा कल्याण कैसे होगा। सुनकर के देवर्षि नारद मनी मन में सोच रहे हैं, मैं जिनके दर्शन करने के लिए यहां आया, जिस कृष्ण का, और कृष्ण इनका बेटा है, दिन रात इनके घर में रहता है, तो उसके दर्शन से इनका जन्म कृतार्थ नहीं हुआ, और मैं उनका एक प्रभु का दास का दास का दास, और हमको दर्शन करने से इनका जन्म सफल हो गया। बात एक ठीक ही है, बात कुछ ठीक ही है। ट्रांसलेट बिकॉज यू कैन एक्सप्लेन।
Once Sri Narad Muni, he came to Dwarka, and in Dwarka at that time big sacrifice was going on under the guidance of Vasudev Maharaj, and the big sacrifice was being attended by thousands of learned brahmanas, and they were doing it with all proper Vedic rituals. The smoke from the yajna fire was spread throughout the universe, and it was purifying the whole atmosphere. At that time, all of the participants, they witnessed that from the sky there was a big light coming, light flame. It was so much radiant that they could not see it. So they were thinking what it is. Then they thought it might be a portion of the sun which is broken and is coming down. So they were fearing also. But as that ball of light, fire, was coming down, it was becoming more clear. Then they noticed that actually there was some man, a shape of man was noticed in that ball of fire. And when it came more down, then it was very clear that the personality in that radiance was Sri Narad Muni. He was so radiant, the pure devotee of the Lord. When Vasudeva Maharaj, he noticed Sri Narad Muni has arrived, he instructed to all the brahmanas to stop doing the sacrifice. He said that now the fruit of our sacrifice has come, so there is no need for doing any more yajna, because sadhu sangha is the essence of all religious activities, whether austerities, charity or penances, whatever one may perform, the highest result of any religious activity is sadhu sangha. And especially the verse says durlabha manusham deham, that this human life is very, very rare. By Krishna's grace, he's called this mercy, those who are fortunate, they receive this human form of life. And within that human form of life, it is more difficult to get the association of Shuddha Bhakta, pure devotees of the Lord. Because when we are in the human form of life, we are engaged in so many activities which are adverse to pure devotion or to bhakti. First 20 years we are engaged in studying, playing, doing so many things. The last part of life we are old and we are struggling with diseases. And in the middle part, we are busy making so many arrangements to live peacefully or happy. So, in all this endeavor, where there is time that we can think for a while, or peacefully we can sit down and do bhajan. So, even in that, if one is able to get the association of pure devotees, then that person must consider himself to be the most fortunate, and he must have full faith that his life is successful now. There is nothing more lacking in his life. He has achieved the result of the human form of life, and that is sadhu sangha. So when Sri Narad Muni came, Vasudeva Maharaj stopped the yajna, and with great honor he bathed the lotus feet of Sri Narad Muni, doing all the performance with different water auspicious stava and glorification. Then very humbly he inquired from Sri Narad Muni that, "O great sage, please tell me, how can I achieve my eternal benefit? What is beneficial for me?" Then Sri Narad Muni, he was in his mind, he's thinking and he's smiling. He said, "Oh, I'm coming to take the darshans of the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna. I'm wandering throughout to serve him, to take his darshans. And that very Personality of Godhead is here in the house of Vasudeva Maharaj as his son, and day and night is performing so many wonderful pastimes. Yet, Vasudeva Maharaj is not considering his life to be successful. Only upon seeing me, he is feeling that his life is successful. What a strange thing." And then again, second thought came to his mind, and he said, "Yes, yes, this is true. This must be true."
जो संत हमारे घर में आए हैं वो संत कैसे हो? नारद जी ऐसा क्या उन्हीं के लाइन में हो? संत किसको कहते हैं? इसको खूब बखूब अच्छी तरह से समझिए, नहीं तो चीटिंग के फेर में पड़ जाएंगे। ब्लफर्स के जो ब्लफ देते हैं, चीटिंग करते हैं जगत को, शुद्ध भक्ति नहीं है। जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उनके फेर में पड़ जाएंगे, उसे सावधान रहना चाहिए। इसलिए भक्तों को भी समझना चाहिए ये भक्त कौन है। ऐसे अंधविश्वास से नहीं चलता, समझना चाहिए। समझेंगे कैसे? पूर्व जन्म की सुकृति हो तब तो उत्कंठा होगी समझने की, जो ये साधु है कि नहीं है, ऐसे नहीं हो जाएगा। पूर्व जन्म की कुछ सुकृति होनी चाहिए, या इस जन्म में कुछ सुना हुआ हो। इसलिए शुद्ध भक्त को समझने के लिए, शुद्ध भक्ति को समझने के लिए ये समझना जरूरी है। ये भक्ति किसको कहते हैं? किसमें ये भक्ति है? नारद जी में शुद्ध भक्ति है, प्योर भक्ति है उनमें। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अद्यनाप्रदम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। पहले भक्ति का डिफिनेशन समझिए, ये भक्ति किसको कहते हैं। ठाकुर जी के चरण में दो पुष्प चढ़ा दिए और चढ़ा करके बोले, हे ठाकुर जी, हमारा बेटा हो जाए और हमारा परिवार सब सुखी रहे, आप अनुग्रह कर दीजिए। ये भी एक तरह की भक्ति है, किंतु शुद्ध भक्ति नहीं है। ये भी एक भक्ति है किंतु शुद्ध है नहीं है। ये कोई कोई प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी को सब सेवा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, भागवत अर्चन कर रहे हैं, प्रीचिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किंतु उनके अंदर में बहुत सी कामनाएं वासनाएं संसार की भोग करने की है। बहुत सी वासनाएं ऐसी हैं, कामनाएं ऐसी हैं जो वो स्वयं संसार में जो गृहस्थ लोग भोग करते हैं उसको भोग करने की लालसा है। इसलिए भगवान की उपासना भी अपने भोगों के लिए चाहते हैं। आ रहा है समझ में? समझने की चीज। भगवान का भजन भी करते हैं किंतु किस लिए? हमको जगत में सुखी रहने के लिए धन, जन, पुत्र, परिवार सब कुछ हमको मिल जाए, इसके लिए भगवान का भजन करते हैं। ये भी भक्ति नहीं है। भगवान की उपासना तो करते हैं किंतु किस लिए? हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए, हमको 10 शीर दे दीजिए और हमको ऐसा शरीर दे दीजिए कभी रोग ना हो, मैं मरूं नहीं, और सबसे सुंदर जो विश्व में लड़की है वो हमको मिल जाए और बहुत अच्छे लड़के हो जाए। भगवान की उपासना तो वो भी करता है किंतु किस लिए किया? अपने लिए किया, भगवान के लिए नहीं किया, यह भक्ति नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्य, भगवान की सेवा के अतिरिक्त जितनी प्रकार की अभिलाषाएं हमारे हृदय में है उसे रहित होना चाहिए। इस जगत में ही यह शरीर रहते हुए यह असंभव है, बहुत कठिन है, बिरले व्यक्ति ऐसा कर सकता है, हो सकता है किंतु बिरले व्यक्ति। यदि साधुओं का संग हो जाए तो आंख में अंगुली देकर वो सबको समझा देगा, जे ये ठीक नहीं है भक्ति, ये भक्ति नहीं, ये अन्नाभिलाषिता है, ये अन्नाभिलाषिता है, ये समझा देगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब उदाहरण के लिए एक उदाहरण समझिए, भरत जी, रामायण आप लोग तो जानते होंगे, भरत जी जब अपने ननिहाल से आए मामा के यहां से तो बड़े दुखी हुए, अयोध्या को विधवा के समान देखा, कुकुर श्याल सब रो रहे हैं और चारों तरफ में शोक उमड़ रहा। राम भी सीता जी और लक्ष्मण को लेकर के वन चले गए हैं, वनवासी का वेश धारण कर। अयोध्या के लोग भी, अधिकांश लोग कुछ चले गए हैं, रामचंद्र जी के साथ में वो चित्रकूट के पहले तक कोई स्थान था वहां तक चले गए हैं। सुनी अयोध्या पड़ी है, जो है भी वो भी रो रहा, कुत्ते तक भी रो रहे हैं, पशु पक्षी तक रो रहे हैं, घोड़े तक भी रो रहे हैं, मनुष्यों की तो बात करें। जब वो आए तो कैकेयी ने बहुत आदर किया और बेटे को अपने गोद में लेकर के ऐसे अंग भर लिया और प्रेम से रोने लगी। भरत जी ने प्रश्न किया, मैया अरे तुम्हारे शरीर में सिंदूर नहीं देख रहा, ये क्यों? पिताजी कहां गए? पिताजी तेरे चले गए परलोक में। भैया कहां है राम? तो वन में गए। लक्ष्मण इको नहीं देख रहा, नहीं तो जरूर दौड़ करके आते। लक्ष्मण कहां है? वो तो राम के साथ वो भी गए। सीता कहां है? वो भी राम के साथ पूछिए। क्यों? तो सब कुछ तेरे लिए, सब तेरे लिए मैंने किया, जो तुम्हारा राज्य अक्षय हो इसलिए राम दशरथ जी से मांगा, अपने पति से राज्य मांगा और उन्होंने राज्य दे दिया और बोला मैं कि तुम्हारा राज्य अचल हो इसलिए वो 14 वर्ष तक उसके लिए वनवास, जब आएगा भी तो कौन पूछेगा उसको, 14 वर्ष में प्रजाओं को मन जीत करके ठीक रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा वो हमारे लिए मांगा। जाओ तुमको आज छोड़ देता हूं, मैं मारता नहीं, नहीं तो आज तुमको मैं अपने हाथों से काट देता। तुमने भैया को राम को राज्य दे दिया, पिताजी तुम्हारे लिए परलोक में चले गए, आज से तुम्हारे और हमारे माता और पुत्र का संबंध खत्म, भूल से भी तुम हमको बेटा मत कहना और हम भी भूल से भी तुमको माए मैया नहीं कहेंगे, भूल जाओ। और तुम क्या समझती हो, मैं राज्य ले लूंगा, मैं अभी जाता हूं सारी प्रजाओं के साथ में, वशिष्ठ जी और माताओं के साथ में राम को लौटा करके ले आऊंगा, जहां भी हूं, सुना है जो वो चित्रकूट में पहुंचे हैं सबको लाऊंगा, ये कह करके चित्रकूल के लिए यात्रा की, सबको साथ में लिया। अब ये भी रोने लगी कौशल्या के पास में, ये क्या रोने लगी, हमको भी ले चलो, मैं यहां पर रह नहीं सकती, तुम्हारे लिए मांगा राज्य। कौशल्या मैया के यहां गई, जैसे मैया तो मेरी बहन, तुम हमको दया करके अपने साथ ले जाओ, भरत नहीं ले जाएगा। कौशल्या बड़ी दयालु, उन्होंने भी कहा अच्छा तो चलो, किस लिए जाना चाहा, जब बेटा ने राज्य ही नहीं लिया तो ये राज्य की जरूरत क्या रही, मैं राम से कहूंगा जी आपने मैंने जो मांग की थी वो लौटा, तुमको अब राज्य छोड़ने की जरूरत नहीं, 14 वर्ष बाद वनवास की भी जरूरत नहीं, और भरत के राज्यों के लिए मांगा था वो भी लौटा लूं और राम को ले आऊंगा मैं, इसलिए वो भी चलना चाहा। सब लोग चित्रकूट गए, भरत जी चित्रकूट पहुंच करके राम से मिले, पिताजी के स्वर्गवास का खबर सुनाया, सबने मिलकर के उनको अंजलि दिया, जो कुछ वहां पर हो सकती है पिता के लिए संस्कार किया, उनका जो पिंडदान इत्यादि वहां पर किया। करने के बाद में ये अपने मन की बातें राम से कहना चाहते हैं, ये तुम चलो, बड़ा भैया राजा होता है, मैं छोटा भैया हूं, आप ही को राज्य करना है। वो सबसे पहले कौशल्या मैया के आएंगे, मैया तू राम से कह दे तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बात जरूर मानेगा, ये तुम लौट चलो और राज्य वहां का करो। मैया ने कहा जी मैं कैसे कर सकती हूं, मैं नहीं कहूंगी। क्यों, मैं गलती में हूं? नहीं, गलती में तुम नहीं है, बात ठीक है, तुम बात निस्वार्थी तू है, कोई स्वार्थ नहीं, किंतु मुझे तो पिता और माता दोनों ने मिलकर के हमको आदेश दिया है, तो केवल अब तुम्हारे आदेश से मैं कैसे जाऊंगा, ये कहेगा राम, इसलिए मैं नहीं कर सकती। और राम भी तो ठीक ही कह रहा है, तुम उसको कैसे आदेश दो। भरत ने बहुत चेष्टा की जी मैया कह दे तो उसकी बात मान लेंगे, किंतु वो राजी नहीं हुई। वशिष्ठ जी के यहां गए रात्रि में और जाकर उससे अनुरोध किया जी महाराज आप हम लोगों के गुरु हैं, राम जरूर आपकी बात मानेगा, मैं भी आपकी बात मानता हूं, तो आप राम से कह दीजिए जो अयोध्या लौट आए। राजे मैं तो नहीं कर सकता ऐसा, तो क्यों नहीं कर सकते, मैं क्या धर्म की बात कर रहा हूं? नहीं तुम अधर्म की बात नहीं कर रहे, मैं जानता हूं कि तो राम भी तो अधर्म की बात नहीं कहता, पिता माता ने उसे आदेश दिया है, उस आदेश को पालन करने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। फिर हाँ एक बात है, ऐसा तुम कर सकते हो कि उसके बदले में तुम वन में जाओ, यदि वो स्वीकार करता है तब वो लौट सकता है। मैं कहूंगा कि ऐसी स्थिति में वो लौट जाए, यदि भरत चला जाए, भरत और शत्रुघ्न चले जाए और उसके बदले राम ना तो चलाएगा, ऐसा तो कर सकता। तो भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, यदि ऐसी बात है तो मैं चला जाऊंगा राज्य, मैं वन में चला जाऊंगा और राम लौट जाए, किंतु यदि वो नहीं माना तो, यदि नहीं माना तो मैं नहीं कर सकता जबरदस्ती लौटने के लिए। फिर जब ये नहीं माने तो गई जनक की स्त्री मैंने सीता जी की मैया सुनैना आई थी, और महाराज जनक बड़े विद्वान, बहुत उच्च कोटि के तात्विक व्यक्ति और भक्तिमान, उनके पास सुनैना के पास में जाकर के बोले मैया तेरी बेटा बेटी सीता जी है, जंगल में उसको कितना कष्ट होगा, अब तुम्हारे जमाई भी हैं, तो तू नहीं चाहती कि रामचंद्र जी जंगल में न जाए, वन में न जाए, सीता न जाए? मैं तो चाहती हूं, तो फिर क्यों नहीं कहती महाराज जनक से वो आदेश दे दें, इस समय जनक ही हम लोगों के सबके पिता हैं और गुरु भी हैं, हमारे कुल के वही एकमात्र हैं व्यक्ति जिसकी बात राम मान सकता है, तो तुम महाराज जनक से कहो, अपने पति से, जो वो उनसे कहें आदेश दे दें, अयोध्या मर रही है, महाराज दशरथ चले गए, कोई देखने वाला नहीं है, और पिता का बड़ा बेटा राजगद्दी पर बैठता है, इसलिए लौट करके जा करके राज्य संभाले। मैंने कहा जी महाराज दस उनको मैं तत्व ज्ञान की बातें नहीं समझा सकती, हमारे पति हैं, फिर भी मैं कहूंगी जैसा होगा मैं कहूंगी उनसे। दशरथ भरत जी चारों तरफ में देखा, मैं बात ठीक कर रहा हूं, कितना त्याग कर रहा राम को लाने के लिए, और धर्म की बात मैं कहता हूं, किंतु हमारी बात कोई नहीं समझता, राम भी नहीं समझता, कौशल्या नहीं समझती, वशिष्ठ जी नहीं समझते, कोई भी नहीं समझता मेरी बात में मेरी व्यथा कहाँ है। सवेरा हुआ, वशिष्ठ जी ने बड़ी भारी सभा बुलाई, जितने अयोध्या से नागरिक आए थे उनको सभा में बैठाया। 88,000 ऋषि चित्रकूट में थे जो तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े विद्वान, घर बार छोड़ करके रहने वाले, धर्म तत्व को समझने वाले, उनको एक तरफ में बैठा दिया। एक तरफ में मैया तीनों बैठी और बीच में बैठे ये महाराज जनक और वशिष्ठ जी पास में बैठे, इधर में राम लक्ष्मण जी बैठे और इधर में भरत शत्रुघ्न जी बैठे। बड़ी अच्छी सभा हुई। सबसे पहले कैकेयी जी ने उठ करके कहा, राम से कहा और सभा के सामने कहा, मेरे आदेश से राम वनवास के लिए आया है, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवासी का वेश धारण करके आए हैं, अब मैं बहुत अनुतप्त हूं, इसलिए मैं अपनी बात लौटा लेती हूं। अब ये राम लक्ष्मण और सीता के साथ में अयोध्या में पधारे और वहां पर राज्य करें। मैं नहीं चाहता कि वो जंगल में जाए। राम उठ करके सब सभा को प्रणाम करके और सबको प्रणाम करके मैया कैकेयी को प्रणाम किया और बोले, क्या मैया तू कहती है ठीक, किंतु उसमें महाराज थे, महाराज से तुमने मांगा था और महाराज जी मौन थे, मौनम सम्मति लक्षणम, इसलिए उसमें महाराज जी की भी इच्छा थी। उन्होंने कहा था जब वन में जाओ वन से लौट करके फिर आ जाना, आदेश दिया था, और उसमें तेरी भी सम्मति थी। तो दोनों को, माता पिता दोनों की सम्मति से मैं आया, अब पिताजी तो है नहीं, तुम अकेली आधी कह रही हो। इसलिए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन हो जाए। प्राण चला जाएगा किंतु हमारे रघुकुल की ये रीति है, धर्म से विपरीत हम नहीं जा सकते, जो कह दिया वो परम सत्य है, पिताजी ने जो कहा वो जरूर हमको करना चाहिए। कहते ही चुप हो गई। इसके बाद में वशिष्ठ जी ने कहा, देखिए आप सभा लोग, सभा के लोग, महाराज दशरथ के जाने के बाद में महाराज जनक ही अयोध्यापुरी और जनकपुरी के महाराज हैं, सबके माता पिता गुरु हैं, मेरी समझ से इनकी बात माननी चाहिए सब लोगों को। भरत तुम इनकी आज्ञा पालन करेगा तो जरूर, राम तुम इनकी आज्ञा का पालन करेगा तो जरूर करेंगे, जैसा आदेश देंगे दोनों से। और तब महाराज जनक से बोले, जी आप तो निष्पक्ष व्यक्ति हैं, धर्म तत्व का निगूढ़ भाव आप जानते हैं, आप विचार करके जो अच्छा हो, उचित हो, धर्म के नीति के अनुसार में हो, आप ऐसा आदेश कुछ दीजिए। इस समय अयोध्या की नाव डगमगा रही, इसको आप ही स्थिर कर सकते। महाराज जनक जी सभा को प्रणाम किया, भगवान को प्रणाम किया, अपने गुरु को प्रणाम किया। गुरु है कौन? भगवान शंकर इनके गुरु हैं। वैष्णव में जथा शंभु, वैष्णवानंद जथा शंभु, वैष्णव के गुरु हैं, इसलिए वैष्णव उनको सब समय गोपेश्वर के रूप में दर्शन करते हैं, बिना उनके आदेश के ब्रज प्रेम नहीं मिल सकता। अपने गुरु को प्रणाम किया, ध्यान किया और तब बोले, हमारे गुरु जी जैसा बुलाएंगे, भगवान जैसा बुलाएंगे, मैं वैसा ही कहूंगा। मैं समझता हूं कि दोनों पालन करने के लिए बाध्य हैं। फिर बोले, देखो मैं विचार करके देख रहा हूं, भरत में राम के प्रति अगाध प्रेम है, उसका था पाना मुश्किल है। उसका प्रेम ऐसे है जैसे पैसिफिक ओशन है, इतना गहरा, कम से कम 9 मील 10 मील से इसका तो था है, और भारतीय के प्रेम समुद्र का कोई था नहीं है। और दूसरी तरफ में राम का धर्म तत्व है। राम कैसा है? हिमालय के समान। हिमालय में चोटी एक बड़ी है एवरेस्ट, वो कितनी मील ऊंची है?
31,700।
अब तो 31,000 के करीब है, करीब करीब 7 मील से भी ऊंचा अधिक। तो राम का जो धर्म है हिमालय है, वो भरत के प्रेम रूपी समुद्र में डूब जाएगा, यह बात ठीक है। किंतु डूबने पर भी वो कैसा रहेगा? हिलेगा नहीं इधर उधर, डूब जाएगा प्रेम में, किंतु डूब करके अपना अस्तित्व नहीं खोएगा। वो कैसा रहेगा? अटल रहेगा। मतलब ये भरत में राम के प्रति अगाध प्रेम है, और राम में है मर्यादा, धर्म की मर्यादा। मर्यादा हिमालय के समान ऊंचा है, हिमालय के समान ऊंचा है। प्रेम में मर्यादा कुछ नहीं रहता है, जहां प्रेम होता है वहां पर मर्यादा टूट जाती है। कि प्रेम नगरी की
कोई पावे ना तो पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे
था। प्रेम नदिया जो है, प्रेम की नदी उल्टी बहती है। देखो ना ब्रिज में कैसा प्रेम, कृष्ण अपनी मुरली और मस्तक दे रहे हैं राधा जी के चरणों में, ये बतलाओ तो ये धर्म की मर्यादा कहां है? कृष्ण कहते हैं मैया मैं नहीं मां खन खाए, ये झूठ बोल रहा है कृष्ण पर ब्रह्म होकर के। यहां प्रेम की जो धर्म की मर्यादा है वर्णाश्रम धर्म की, वहां पर टूट जाती है। मतलब भगवान देखो तो प्रेम में पक करके झूठ बोल रहे, मैया मैं नहीं माखन खाए, यशोदा जी कह रही है तय नहीं माखन खाए, दोनों में चल रही है रसम कसम। और फिर कृष्ण कहते हैं कि ओ मैं समझ गया, मैं तेरे को का बेटा नहीं, इसलिए हमको इल्जाम लगाती है। भोर भयो मधुबन पठायो, मैं गैया चराने के लिए मधुबन में भेजा, भोर होते ही अभी पाव नहीं फटी, अंधकार में ही गऊओं को लेकर के चला, गईयों को दिन भर चलाया, और फिर शाम जब हुई तो मैं यहां आया, और आते ही तू कहते जे तो नहीं माखन खायो, तो मैंने माखन कब खायो? यदि तुम हमको जाया होती, यदि जन्म दिया होता तो ऐसे नहीं करती, मालूम होता है जो मैं दूसरे से उत्पन्न होकर के तुम मुझको पाला पोसा, इसलिए तुम्हारा हमारे प्रति स्नेह नहीं, इसलिए हम पर इल्जाम लगा रहे। बस सुनते ही यशोदा जी द्रवित हो गई, बोलते नहीं तैने नहीं नहीं माखन खाए, तुमने माखन नहीं खाया, वो मैं ऐसे कह दिया था। और कृष्ण क्या करें, मैंने ही माखन खाया, अरे मैंने ही माखन खाया, और वो भी रोने लगे, वही रोने लगे, कृष्ण भी रोने लगे, गोदी में ले लिया बड़ी मुश्किल से। तो प्रेम नदिया की बहे उल्टी धार, प्रेम जो नदी है इसकी उल्टी धार बहती है। महाराज जनक कह रहे हैं प्रेम में धर्म की मर्यादा भी नहीं रहती। गोपियों का यदि देखेंगे तो ये आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे, और किसी के चरित्र में ऐसा नहीं। तो जैसा हो, यह लंबा विषय हो जाएगा प्रेम के संबंध में बोलेंगे तो, ऐसा समझिए उन्होंने कहा। किंतु मर्यादा एक होती है प्रेम की अपनी, धर्म की मर्यादा नहीं, प्रेम की मर्यादा होती है। भरत तुम समझो प्रेम की मर्यादा क्या होती है, मैं ये समझ रहा हूं कि इसमें तुम्हारा जैसा प्रेम है तुम्हारी जीत हुई, और राम को तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी जीत हुई, तुम्हारा प्रेम अगाध है, समझो। और सुनते ही सारी प्रजाएं भरत सभी लोग बड़े खुश हो गए, भरत की जीत हुई तो उनको लौट करके जाना पड़ेगा, एकदम बड़े प्रसन्न। रामचंद्र जी गंभीर बने हैं, भरत जी सोचा जी अब तो इनको ले चलेंगे, अब तो इन्होंने आदेश दे दिया। उन्होंने कहा से देखो तुम्हारी जीत हुई, किंतु प्रेम की अपनी मर्यादा होती है। कैसी मर्यादा? देखो राधा जी कृष्ण के विरह में प्रमत्त है, कृष्ण मथुरा चले गए और उस समय में कृष्ण की चिंता करते 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 राधा जी बावरी हो गई हैं और वे तमाल के वृक्ष को देख करके जैसा है सांवला श्यामल रंग के पत्ते हैं और उसको देख करके कृष्ण कृष्ण कर उसकी रक्षा करता है, जो काले मेघ को देख करके उसे कृष्ण से लड़ती हैं कृष्ण समझ करके, एक भावना को देख करके कृष्ण का दूत समझ लिया, किंतु उद्धव को देखा तो क्या कहा, ये कृष्ण का दूत है बस, ये धर्म उसकी मर्यादा रखता है। तो ये प्रेम की मर्यादा भक्त तुमको समझनी चाहिए, ये क्या है, यह पर शुद्ध भक्ति का मैं विचार दे रहा हूं, समझे। भरत अब तक चाह रहे थे राम को ले जाने से मैं बहुत खुश होऊंगा और सारी प्रजाएं सुख होंगी। महाराज जनक जी ने कहा जी देखो धर्म तत्व का ये निगूढ़ रहस्य है, प्रेमी जो अपने आराध्य का प्रेम करता है, अपने आराध्य से प्रेम करता है, वो देखता है हमारा आराध्य कैसे सुखी है, कैसे सुख होगा, वो क्या चाहता है ना? तुमको ये समझना चाहिए, तुम तो समझते हो कि राम के जाने से तुम खुशी हो जाएगा, तुमको खुशी होगी, राम को खुशी होगी कि नहीं ये समझो, राम क्या चाहता है, इसलिए आराध्य का विचार समझो। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम, कोई भी अभिलाषा भी नहीं रहेगी तो भी भक्ति नहीं होगी, अभिलाषा भी नहीं है तो भी भक्ति नहीं हो सकती, कब होगी? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, हमारी सारी चेष्टाएं किसके लिए होगी, कृष्ण प्रसन्न हो, हमारी प्रसन्नता से भक्ति नहीं होगी, यह तभी अन्य अभिलाष हो गया। इन्हें समझो, ये तुम्हारा इष्ट किस में सुखी होगा ये करो तो पूछो राम से, तुमको पता नहीं है तो पूछो, और यदि जानते हैं तो वैसा ही करो, राम को प्रसन्न जिसमें रहें ये करो। आंखें खुली और महाराज जनक के चरणों में गिर पड़े, बोलिए सचमुच में आप मेरे गुरु हैं, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब तक मैं समझता था अपने सुख के लिए जाना चाहता उसमें जाने से, अब मैं ये जानने की चेष्टा करता हूं कि राम को किस में सुख होगा। राम के चरणों में गिरे, बोला बोले जी भैया आप कैसे सुखी हैं? उन्होंने कहा जी देखो महाराज जनक ने तो ये बतलाया कि तुम्हारी जीत हो गई, इसलिए तुम्हारी जीत है, मैं हार गया, इसलिए तुम चाहते हो मुझे अयोध्या लेकर के राजगद्दी देना, तो मैंने राजगद्दी ले लिया, मुझको स्वीकार है, राजा तो ही हमको बनाना चाहता था अयोध्या का, तो राज्य मैंने ले लिया और मैं वहां का राजा हूं, मेरे तुम छोट भैया हो, और मैं ये चाहता हूं कि पिताजी का आदेश हम दोनों पालन करें, मैंने राज्य ले लिया ये मेरा है और तुम हमारा प्रतिनिधि हो करके इस राज्य का पालन करो जब तक कि मैं नहीं आ जाता, मैं 14 वर्ष के लिए थोड़ा सा घुमाऊं, देवताओं का भी काम है ऋषियों का भी काम है और पिताजी का आदेश भी मैं पालन कर लूंगा और मैं 14 वर्ष के बाद ही मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा, अभी प्रतिनिधि होकर के तुम करो। बस भरत जी ने उनके चरणों में शीश नवाया और उनके खड़ाओं को प्रतिनिधि बना करके, उनका खड़ा ही राम का प्रतिनिधि है, ले गए और वहां रख करके उसकी पूजा कर रहे और उसी के पल पर सारा राज्य करा रहे, और एक दिन रहा तो भी रामचंद्र जी को आना पड़ा राज्य। जब तक ऐसा नहीं होगा वो भक्ति नहीं है। नारद जी उस कोटि के भक्त हैं भाई, उनमें कोई भी अन्य अभिलाष नहीं है। जगत में भक्ति तो शुद्ध होती है, किंतु जो पालन करता है उसमें सब में शुद्ध भक्ति नहीं, मिक्सर होती है। यदि भक्ति कर रहे हैं और आप में कोई संसारिक वासना है, यहां तक भगवान को मैं खुशी होऊंगा उनकी सेवा करके, तो भी भक्ति नहीं होगी। यही गोपियों में खूबी है। क्या खूबी? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने चरणों को भी कृष्ण के, अपने चरणों का महावर कृष्ण के सिर पर रख करके छाप दे देती है। कृष्ण चाहते हैं ये मान करो, तो कृष्ण को गाली गलौज भी करती है, धूर्त लंपट चोर सब कहती है। ये धर्म का एक विशेष निगुण रस है। इसलिए जब तक कि कृष्ण के लिए जो चेष्टाएं होंगी, वॉट एवर यू डू, डू फॉर कृष्ण, टू प्लीज कृष्ण, कृष्ण को प्रसन्न होने के लिए हम कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं, हम कुछ उसमें अपना बिजनेस तो नहीं जोड़ रहे। ये धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर बिजनेस करेंगे, यदि ऐसी बात है तो ऐसे लोगों से हजारों मील दूर रहिए प्रणाम करके, ऐसे लोगों से कोई शक नहीं, तो तुम्हारी रही सही भक्ति भी बिगड़ जाएगी। इसलिए शुद्ध भक्ति जिनके हृदय में हो, जिनमें कोई अल्टरेशन नहीं हो, भक्ति शुद्ध भी क्यों हो, एंड इट विल बी ए पर्सन लाइक नारद, नारद जैसे व्यक्ति में ही ऐसा हो सकता है। उन्होंने पहले स्टेज को भी पार कर लिया है महाभागवत का, दूसरे स्टेज को भी पार कर लिया है, तीसरे स्टेज में अब है और भगवान के परिकर हैं। उनके अंदर में अपनी अभिलाषा तनिक भी नहीं है, हम लोगों में रहने की अभिलाषा, जीवन निर्वाह के लिए तो कुछ चाहिए, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहा जाए, और ऐसी वासना से जो दूर रहे वो भक्ति में आएगा, नहीं तो लाखों जन्म उसके उसी में लग जाएंगे, वो अपने को धोखा दे रहा है, चीटिंग हिमसेल्फ, इस चीज को समझ। इसलिए भक्ति साधारण चीज नहीं है, भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। नाउ कैन यू ऑल एक्सप्लेन? वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, बट यू कैन टेल समथिंग। समझ रही है आप लोग? समझ रहे हैं ना? तब ये भक्ति होती है, ऐसी नहीं है दो फूल चढ़ा दिया और रोटी सेक करके और ठाकुर जी को दे दिया, आप खाना है तो खा लो, नहीं तो मैं तो जा रही हूं काम पर। संसार में कहीं भी आसक्ति रहेगी और भगवान का भजन करेंगे, भाई अभी भक्ति नहीं है। है भक्ति कुछ कुछ, उसमें लगी हुई है, कृष्ण से संबंध, किंतु शुद्ध भक्ति नहीं। इसके संबंध में और पीछे बतलाऊंगा। हाँ,
राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा।
आप चलिए कथा। महाराज वसुदेव जी ने कहा, आप जैसे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है, एक क्षण भर के लिए भी आपका संग यदि मिल गया तो हमारा जीवन बदल जाएगा और सुखी हो जाएगा। एक क्षण भर के लिए लौ मात्र साधु संग है सर्व, यदि एक क्षण के लिए भी साधु संग मिल गया, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अतः अत्यंत कम क्षेमम पृच्छामो भवतो अनघा। हे महाराज संत शिरोमणि, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि संसार के जो जीव हैं उनका कल्याण कैसे होगा, वो कैसे सुखी हो सकते हैं, ये उनका प्रश्न, उनका कल्याण कैसे होगा, वो कैसे जीवन में सुखी हो सकते हैं, आप कृपा करके हमको बतलाएं। नारद जी ने भगवान का स्मरण किया और बोले, भयं द्वितीयाद अविनिवेश ઈશાત અપેતસ્ય વિપર્યો સ્મૃતિ તન્માયાતો બુધ આ ભજેત તં ભક્તૈ જેષાં ગુરુ દેવતા. ભગવાન કો પ્રણામ કરકે બોલે, દેખો ઇસ સંસાર મે જીતને જીવ હૈ યે ભગવાન કે અંશ હૈ ઓર ભગવાન કે નિત્ય સેવક હૈ. ઇન દિસ વર્લ્ડ ઓલ ધી લિવિંગ એન્ટિટીઝ આર પાર્ટ એન્ડ પાર્સલ ઓર સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ. ધ એટર્નલ સર્વેન્ટ લોર્ડ. કિંતુ ભયમ આજકાલ ડર રહે હૈ. અભિગ્રહ કરતા ડર સકતે હૈ કે મહારાજ જી આયે હૈ હમારે બચ્ચોં કો એસી શિક્ષા દે દે તો મુશ્કિલ હો જાયેગા. યે જદિ વૈરાગી ઓર સાધુ મહારાજ જૈસે હો જાયેંગે તબ હોગા ક્યા? ડર લગતા હૈ આપકો? નહીં હૈ. જબ દોનો બચ્ચે ચલ જાયે ઉનકી સ્ત્રી ડરેગી ઓર સબ લોગ ડરેંગે. અભી જગન્નાથ જી ભી લે રહે હૈ ભીતર ભીતર સંકલ્પ જી અબ ઘર કો છોડ કરકે હમ ભી અબ વૃંદાવન મે નિવાસ કરેં. એસી હરી કથાઓ કા પ્રભાવ હી એસા હૈ તો સબ લોગ ડરેંગે. આયા હમરા સંસાર બિગડ જાયેગા. તો યે ડર કિસ લિયે હો રહા હૈ? કૃષ્ણ કો છોડ કરકે હમ કૃષ્ણ કો ભૂલ ગયે ઓર ભૂલને સે હમારી યે દશા. હમ ઇસ માયા મે પડે હુએ સમજ કર ભી કુછ નહીં સમજ પા રહે. બસ શરીર કો માન લિયા મેં ઓર ઇસ શરીર સે સંબંધિત વસ્તુઓ કો માન લિયા. મેરા યે ઘર મેરા. કબ સે આપકા હૈ યે ઘર? આપકે જન્મ સે પહેલે સે આપકા ઘર હૈ? ये स्त्री आपके जन्म से ही है? ये बच्चे क्या जन्म से ही है? मैं आपको मैंने संबोधित कर कर्म ने सबके लिए कह रहा. यदि आपकी पत्नी को अस्वस्थ हो जाती है तो आपको डर लगता है कि नहीं कि कहीं चली नहीं जाए हमको छोड़ करके? होता है ना. इसको घर में कभी रिपेयर कराते हैं किस लिए? खराब ना हो जाए. यदि कहीं गिर पड़ा तो इस तरह से सब समय भय लगा हुआ है. क्यों? भयं द्वितीयाद हम निवेशतः. ये शरीर को मान रखा है जो मैं हूं और ये शरीर से संबंधित वस्तु हमारे हैं ऐसा मान रखा है. किंतु है क्या असल में? कृष्ण ही हमारे हैं और मैं कृष्ण का हूं. ये इसके अंतर में हमारा आत्मा का शरीर है. इसको भूल गए और कृष्ण जो हमारे प्रियतम है नित्य एटर्नल इसको भी भूल गए और ये संसार में हमारी दुर्बुद्धि. ये मेरा है, ये मैं, यही समस्त दोषों का कारण है. यदि कोई बुद्धिमान पुरुष हो और साधु संग हो जाए, नारद जी कह रहे हैं, तो तन माया तो आप भजित तो आपके चरणों में भजन करेगा. उनका नाम कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन करेगा और गुरु को देवतात्मा जो आपका भजन कराने वाले हैं, जो भजन का उपदेश देते हैं, ये सब उपदेश देने वाले जो गुरु हैं वो हमारे आत्मा अत्यंत प्रियतम है. इसलिए गुरु के अनुगत्य में कृष्ण का भजन करो. ये जिससे सारी अज्ञानता दूर हो जाएगी और जन्म जन्मांतर के लिए हम लोग सुखी हो सकते हैं. कहते हैं षड वन सुभद्राणि रथांगपाणि जन्मान कर्मान च जानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिलज्जो विचरे. यदि गुरु के से ये समझ समझता है विषय तो सतगुरु से समझने के बाद भजन करने की लालसा उसकी होती है. ये संसार दुखमय है. ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो. जरूर प्रॉब्लम होगा ही. कुछ नहीं होगा तो कोई रोग होगा. आपकी माता और पिताजी ने आपको एक बेटी को पति के साथ में दूसरी जगह क्यों भेज दिया? क्यों भेजा? कुछ प्रॉब्लम है. हमारे ऋषियों ने इस प्रॉब्लम को समझ करके इसको सॉल्व करने की कुछ चेष्टा की, नहीं तो भाई और बहन में लड़ाई होगी रोज। इसलिए बेटी को कुछ दे करके और दूसरे के पास में भेजा जो वहां पर ठीक रहे, और इधर भाई लोग लड़ाई झगड़ा, किंतु हो रहा है वही, जहां दोनों का विवाह कर दिया दोनों लड़ने लगे, ये घर मेरा है तो ये मेरा है, इसलिए नया प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए दिन पर दिन, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है संसार। आजकल तो और भी स्पष्ट रूप में देखते हैं, शादी कर दी, अच्छे घर में कर दी, सब कुछ कर दी, और दो दिन के बाद में तलाक। आजकल इंडिया में भी हवा वाइये चलने लगी, एक दिन भी पति से नहीं बनती, वो कहता है ये मेरा बैंक बैलेंस मेरा है, ये तुम्हारा कुछ नहीं, और वो कहती है ये मेरा है, बेटे कहते हैं कि मेरा है, बनती नहीं। इसे लाखों प्रॉब्लम से इस कल युग में है, कोई भी सहन नहीं करना चाहता। इसलिए कहते हैं देखो, भगवान का भजन करो, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के भजन करें। जो जो दीक्षा ले लिया वो पूरे भक्त हो गए, निष्कपट हो गए, नारद जी जैसे हो गए, ऐसा मत समझो। इसके बहुत से स्तर है, बहुत से स्तर, इसमें बहुत से स्तरों की बातें बतलाई गई है। नारद जी बहुत सुलझे हुए परम भक्त हैं। अच्छा मान लिया कि एक आज दीक्षा ले लिया, हरि नाम कर रहा है, उन जो नाम कर रहा है, और जो संबंध ज्ञान से ओतप्रोत होकर के, संसार से निर्लिप्त होकर के, अनाशक्त होकर के नाम कर रहे हैं, उनका उसका नाम दोनों एक ही होगा? आ रहा है समझ में? आप समझ रहे हैं? एक नहीं होगा। और नारद जी का किया हुआ नाम और उस व्यक्ति का बीच का जो है एक समान होगा? नहीं। साधारण लोगों के लिए उपदेश दिया जा रहा है कि देखो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद शिवनम अर्चनम वंदनम दास शाखा, गुरु से दीक्षा लेकर और शिक्षा लेकर गुरु का सेवा करते हुए तुम भगवान का नाम स्मरण करो, कीर्तन करो, उनकी कथाओं का श्रवण करो, इस प्रकार से आगे बढ़ो। किंतु अनर्थ उसमें भरे पड़े हैं, ये संसार मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सब उसमें कुछ कुछ है, तभी करना है प्रयास, ठीक है प्रयास, किंतु वो स्टैंडर्ड का नहीं है जिसको भाव उत्पन्न हो गया, जिसको निष्ठा हो गई या रुचि हो गई है भजन में, ऐसा उसका नहीं होगा। यहां पर ये कह रहे हैं श्रीमन सुभद्रा रथांग पाणी जन्मान कर्मान से जान लो के, जिसके अनर्थ कुछ हद तक दूर हो गए हैं, भजन करते करते शुद्ध गुरु पर आश्रय किया है और गुरु का उपदेश मान करके चलता है, चाहे वो गृहस्थ है चाहे त्यागी, इसका अंतर नहीं। गृहस्थ आदमी यदि एक स्त्री के साथ में विवाह कर रहते हैं तो उसको भी ब्रह्मचारी ही कहा जाता है, यदि ठीक से चलते हैं तो ब्रह्मचारी ही। हमारे शास्त्रों में गृहस्थ भक्त भी बहुत से देखे जाते हैं, त्यागी भी देखे जाते हैं, अपने भक्ति के अनुसार में, जिसकी जितनी भक्ति है, गृहस्थ के और त्यागी से नहीं मापा जाता है, कृष्ण के प्रति कितना उनका प्रेम है, कैसी सेवा वासना है, इसके अनुसार में मापा जाता है। नारद जी त्यागी हैं और गोपियां क्या हैं? क्या है वो? नारद जी के आराध्य हैं ये गोपियां, यशोदा मैया और राधिका इत्यादि, बहुत ऊंचे, नारद जी से भी बहुत। हनुमान जी त्यागी भक्त हैं, राम की सेवा करने वाले, उनसे बहुत उच्च कोटि के ये पांडव लोग हैं, द्रौपदी, उनसे बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। ये समझ में नहीं आएगा, समझाने से समझ में आएगा। इसलिए ये कहते हैं जो लोग हरिनाम दीक्षा लेकर के भजन कर रहे हैं नियमित अनुसार में, और श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण कर रहे हैं, उनके अनर्थ अभी दूर नहीं हो गए हैं, तो उनके लिए क्या बतलाया गया? उनके बतलाया गया कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, नित्यम भागवत सेवा। यदि अनर्थ कुछ तक दूर हो गए हैं, कुछ आगे बढ़ गया है, अनर्थ दूर हो गए हैं, उनके लिए बतलाया गया श्रीवन सुभद्राणी रथ अंग पाणी, रथ अंग पाणी, रथ पर बैठे हैं ना, किसके? अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हैं। वो जो सुभद्राणी हैं, जिनके जन्म और कर्म नित्य है, दिव्य है, उनके जन्म कर्म, कौन से कर्म किए, ब्रज में कौन से कार्य किए, और मथुरा आने पर कौन कौन सी लीलाएं की, और फिर द्वारका में आकर के कौन कौन सी लीलाएं की, दुष्टों का संहार करके धर्म की प्रतिष्ठा की और प्रेम रस का आस्वादन किया ब्रज में, बड़ी मनोहारी सब लीलाएं हैं। इनका श्रवण करे, और श्रवण करके क्या करे, गीतानी नामानी तदर्थकानी, तदर्थकानी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के नामों का कीर्तन करे, उनके चरित्र का वर्णन करे, जैसे हम लोग अभी वर्णन कर रहे हैं, हम भी प्रसन्न कृष्ण को प्रसन्न होने के लिए कर रहे हैं, और आप लोग भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यह सब सुनेंगे, जो ऐसा हम योग्य बनकर के सेवा करेंगे ना? और गायन भी लज्जो, लज्जा की कोई बात नहीं, ये इतने आदमी है, हमारे ससुर भी हैं, सास भी हैं, और हमारे पिताजी भी हैं, सबके सामने ऐसे हाथ उठा करके कैसे हरी बोल कैसे कर, नहीं कोई लज्जा की, लज्जा करो किस काम में, चोरी में, चमारी में, झूठ में, कपटता में तुम लोग लज्जा करो, भगवान का नाम लेने में, भगवान की कथाओं को सुनने में। गौर प्रमानंदे
हरि,
इसमें लज्जा की बात क्या है? कीर्तन करते करते ठाकुर जी की मूर्ति है, उसके सामने मीरा जी क्या करे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और कृष्ण जी बजा रहे हैं और वो भी बजा रही हैं सितार अपना वीणा, और एकदम गान करके तन्मय हो गई है, कोई लज्जा नहीं, किसी से भी लज्जा नहीं। ऐसा साधक भी करेगा, लज्जा चोरी में करो, कपटता में करो, बदमाशी में करो, किंतु भगवान के नाम में लज्जा, तो धीरे 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 भक्ति देवी तुम्हारे हृदय में आ जाएगी। विचरे तसंग, अपना कर्तव्य कर्म करो, किंतु कहीं भी आसक्त मत हो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति है, ये पुत्र है, आसक्त मत हो, कृष्ण के सेवक सेविका है, उनका आदर करो, उसको ग्रहण करो, धन खराब चीज नहीं है, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, धन अच्छी चीज है ना, तो भोगों को भोगने के लिए नहीं, भगवान की सेवा में लगाओ, वैष्णव की सेवा में लगाओ, अपना जन्म कर्म बनाने के लिए लगाओ, उसी धन से नरक में जाएगा शराब पी करके और ये दुष्कर्म करके, और उसी धन को भगवान की सेवा, वैष्णव की सेवा करके वैकुंठ में चले जाएंगे। तो इसलिए कोई भी संसार की चीज बुरी नहीं है, ये बच्चे बुरे नहीं है, स्त्री बुरी नहीं है, तो फिर पांडव लोग कैसे संसार किया, कृष्ण ने कैसे संसार किया द्वारका में, उसका सदुपयोग और दुरुपयोग देखो, दुरुपयोग मत करो, सब सभी कृष्ण के सेवक सेविका है, इसलिए उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, ऐसा नहीं ये हमारे शत्रु है, ये हमारे मित्र है, ऐसा नहीं, इसलिए ऐसी आसक्ति को छोड़ करके अपने कर्तव्य कैसे करो, किंतु प्रीति रखो भगवान और वैष्णव में और हरि नाम में। एवं व्रत सुप्रिय नाम कृत्या जातानुरागो जित उच्चत, ऐसे करते करते, ऐसे कीर्तन करते करते करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।
अब हरे का हरा राधा जी आ जाए, ये कृष्ण के चित्त को हरण करने वाली, और जब कृष्ण का शब्द आए तो कृष्ण से क्या समस्त जगत को आकर्षण करने वाले ये कृष्ण है, राम से समझो जय राधा रमण, ये राम है, ये सब अपने प्रिय नाम है, इन नामों को करो, हाँ करते 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 शीघ्र ही अनुराग तुम्हारे हृदय में आएगा कृष्ण के प्रति, चित्त द्रवित हो जाएगा। कभी वो कृष्ण को लीलाओं को करते हुए देख करके कभी हंसेगा, आप कभी अंतर ध्यान होने पर रोएगा, कभी जमीन में लोटेगा फूटेगा, कभी उन्माद एकदम ग्रस्त हो जाएगा जैसे नारद ऋषि हैं, जैसे रूप सनातन हरिदास ठाकुर है, उन्माद ग्रस्त हो जाएगा, शुद्ध प्रेम उसके हृदय में आ जाएगा। अभी व्याख्या करने की तो बहुत थी, मैंने संक्षेप में सब कुछ बतलाया, अब कृष्ण के बाद में तब तुम लोग उनको बतला देना, दे विल एक्सप्लेन यू आफ्टर माई गोइंग, आई कैनॉट सी योर शो मच, डॉक्टर्स हैव टॉल्ड मी। सो अब कल हम लोग मिलेंगे सवेरे में, आप लोग आ सकते हैं, 10-5 मिनट हरि कथा बोलेंगे जैसे कि होता है, शाम को हम लोगों का वहां पर रहेगा। आज एकादशी है, आज से ही आरंभ कर देना, आज से जरूर हम दो एक माला करेंगे, कितना बज गया,
11:10
अब मैं चलो थोड़ा, ठीक है, हमारा सब पर आशीर्वाद है, माय हार्टली ब्लेसिंग्स टू ऑल, पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्मि क्षिप्ताश्च कामादितरंगमध्ये कृपामयीं त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुअस्ति यं ब्रह्मव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्य द्वैपायनो विरहकात्रयाशुभा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयामि चरणं।